बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह अस्सुफा ऑडियो लाइब्रेरी की आवाज़ है। मुलाहिज़ा कीजिए, अशफाक अहमद ख़ान की तहरीर सिलसिला दौरे नबूवत के बच्चे से मुतीए आज़म, जो 32 सफहात पर मुश्तमिल है। पेशे लफ्ज़। इंसान के सामने हमेशा दो ही रास्ते होते हैं, एक मंजिल की तरफ ले जाने वाला और दूसरा मंजिल से भटकाने वाला। फितरत में अगर पाकीज़गी के चराग जल रहे हों तो कदम खुद ब खुद बग़ैर किसी ख्वाहिश के मंजिल की तरफ जाने वाली शाहरा पर उठ जाते हैं। उसमें किसी तरगीब की ज़रूरत पड़ती है ना तबलीग की। बातिन की कैफियत बदल के रह जाती है, इंसान के अंदर का मौसम बहार आफरी हो जाता है और बिल आखिर अपनी सलीम फितरत के बाइस मंजिल उसके कदमों से लिपट लिपट जाती है। खैर व भलाई के रास्ते पर उन्हें बेहतरीन रहनुमाई दस्तियाब हुई। उन्होंने दिलो जान से अपने उस्ताद मोहतरम की हिदायत को सुना, उन्हें दिलो दिमाग के हर गोशे में बसद अदब व एहतराम सजाया, अपने उस्ताद के हर हर फरमान को बेमिसाल फरमाबरदारी से निभाया, हर हुक्म की फौरी तामील की, उनकी हर ख्वाहिश और तमन्ना तक को अमल का पहनावा दिया। उस्ताद के नक्शे कदम पर चलना उनके लिए हर शय से मकदम था। इन्हें अपने उस्ताद मोहतरम से शदीद मोहब्बत थी। उनकी अतात उनकी सच्ची मोहब्बत का नादिर नमूना थी। और हकीकत तो यह है कि जिस मोहब्बत में अतात और फरमाबरदारी ना हो, वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम की हयात में भी अहद वफा निभाया और उनकी वफात के बाद भी मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करते रहे। दुनिया उनके लिए तिनके के बराबर भी हैसियत नहीं रखती थी, क्योंकि वो दुनिया के असल रूप को जान चुके थे। इसीलिए उन्होंने दुनिया से बेरग़बती इख्तियार की। दुनिया के बारे में उन्होंने कहा, दुनिया की मिसाल तो एक दरख्त की मानिंद है, जिसके साए में आदमी घड़ी दो घड़ी आराम करता है और आगे को चल देता है। आखरत उनकी हकीकी मंजिल थी और इसके हुसूल के लिए वो दमे आखिर तक कोशां रहे। ये बेमिसाल फरमाबरदार अपने दौर के फ़िक़िया कौन थे, इनका तारुफ मुलाहिजा फरमाएं। वसलाम अब्दुल मालिक मुजाहिद। हज का मौका था। मक्के में हर तरफ हज्जाज कराम नज़र आ रहे थे। मक्के की फ़जाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज रही थीं। अल्लाह की वहदानियत का कलमा पढ़ने वाले अहम तरीन दीनी फरीज़ा अदा करने के लिए बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहे थे। ये अमवी खिलाफत का दौर था। अब्दुल मलिक बिन मरवान मुसलमानों का खलीफा था। उन दिनों मुसलमान हुकूमत की तरफ से किसी बाअसर और मकबूल शख्सियत को अमीर हज बनाकर भेजा जाता था और खलीफा वक्त ने उस हज के मौके पर हुज्जाज बिन यूसुफ को अमीर बनाकर भेजा था। हुज्जाज बिन यूसुफ सख्फी वो शख्स था जिसने बे इंतहा खून रेजी करके लोगों के दिलों में अमवी खिलाफत का रौब और दबदबा कायम किया था। इसके जुल्म सितम की हैबत की वजह से लोग अतात पर मजबूर थे, लेकिन इनके दिल नफ़रत से भरे हुए थे। अमीर हज के तौर पर हज्जाज फ़ख्र गुरूर की अलामत बना बैतुल्ला में मौजूद था, लेकिन हैरत की बात थी कि अपने चंद साथियों के अलावा इसके पास कोई नहीं था। हज्जाज जानता था कि लोग इसे पसंद नहीं करते, फिर भी इसकी दिली ख्वाहिश थी कि इसके गिर्द लोग इकट्ठे हों, इसकी बात सुने, इससे अपनी बात कहें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इसी कैफियत में हुज्जाज की नज़र एक सिमत में पड़ी। लोगों का एक हुजूम था जो इस तरफ टूटा पड़ रहा था। हुज्जाज को ताज्जुब हुआ, वहाँ ऐसी क्या चीज़ थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। उसने हैरत से अपने साथियों से पूछा, उस कोने में क्या है, लोग क्यों दीवानों की तरह उधर लपक रहे हैं। हुज्जाज की हैरानी भाप कर उसके साथी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो जानता था कि असल सबब क्या है। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपा कर कहा, ये एक दीनी हलका है, लोग गालिबन किसी दीनी शख्सियत के गिर्द जमा हैं। दीनी शख्सियत ऐसी कौन सी हस्ती है जिस पर लोग परवानों की तरह टूट कर गिर गए हैं। हुज्जाज की कैफियत अभी तक वही थी। हुज्जाज का वो साथी दिली तौर पर इस हस्ती का हमदर्द था और चाहता था कि वो हुज्जाज के शर से महफूज रहें, इसलिए वो इस हुजूम की अहमियत को कम से कम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके एक दूसरे शर पसंद साथी ने जल्दी से कहा, अमीर मोहतरम, यहाँ आलम इस्लाम की एक बड़ी नामवर हस्ती मौजूद हैं, इसलिए लोग आपको नज़रअंदाज करके इनके गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि अमीर हज आप हैं। हज्जाज इतना बेवकूफ़ नहीं था कि अपनी साथी की बातों में आ जाता, लेकिन इसके दिल में हसद की आग भड़क उठी थी। हसद भरे लहजे में बोला, कौन है ये साहिब? इन्हें कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं? ये अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं, हज्जाज के इसी साथी ने कहा, जो दिल से अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का अकीदतमंद था। इल्म व फ़ज़ल के लिहाज से एक बुलंद पाया सहाबी, सबसे ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा करने वाले, ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी में बल्कि ज़िंदगी के बाद भी। अच्छा, तो ये अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं, हज्जाज ने हैरत की दुनिया से बाहर निकलते हुए कहा। फिर इसने अपने साथी की तरफ रुख किया और तिरछी निगाहों से इसे घूर कर कहा, और क्या जानते हो तुम इनके बारे में? हुज्जाज का वो साथी लुत्फ व सुरूर की किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। बोला, इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से बहुत मोहब्बत रखते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें लोगों की नज़रों में मकबूल और महबूब बना दिया है। तो ये लोगों में बेइंतहा मकबूल हैं, हुज्जाज ने तिलमिलाकर कहा। हसद के शोले मुकम्मल तौर पर इसके दिल को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। जो मंजर इसकी निगाहों के सामने था, इसने खुद ऐसे अपनी नज़रों में कमतर बना दिया था। वो हुकूमत का नुमाइंदा था, अमीर हज था, लेकिन कोई इसको पूछने वाला नहीं था, कोई इसके करीब आना पसंद नहीं करता था, बल्कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के गिर्द लोग मजमा बनाए हुए थे। इसने अपने एक साथी को करीब बुलाया और इसके कान में सरगोशी की, सुनो, इस आदमी को देख रहे हो? कौन सा आदमी अमीर मोहतरम? इसका साथी मुअद्दब लहजे में बोला, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिसके गिर्द लोगों का हुजूम है। हुज्जाज ने हुजूम की तरफ इशारा किया। जी अमीर मोहतरम, वो वाकई इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। मुझे इसकी मकबूलियत एक आंख नहीं बहा रही। इस आदमी की वजह से कोई मेरे करीब नहीं आ रहा। तुम चुपके से इसे जहर आलूद नेज़ा मार दो। हुज्जाज के साथी ने हैरत और बेयकीनी से इसे देखा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ज़िंदगी के बोझ से आज़ाद कर दो, हुज्जाज ने इसकी कैफियत को महसूस करके दोबारा कहा। ठीक है अमीर मोहतरम, इसके साथी ने एहतराम से सर झुका दिया। लोग मैदान अरफात से वापस आ रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा भी लोगों के हुजूम में चले आ रहे थे। हुज्जाज का वो साथी इनके करीब होने की मुसलसल कोशिश कर रहा था, लेकिन इनके अकीदतमंदों का हुजूम इतना ज़्यादा था कि इसे अपने मकसद में कामयाबी नहीं हो रही थी। लेकिन मुसलसल कोशिश और जिद्दोजहद से बलाखिर वो इनके करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। करीब आते ही इसने जहर में बुझे नेज़े को इनके बरहाना पाँव के साथ फेर दिया। ये जहर इतना ताकतवर था कि जिस्म के करीब आते ही असर कर जाता था। नेज़ा तो फिर इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के पाँव से मस हुआ था। इसके नतीजे में वो शदीद बीमार हो गए। हुज्जाज अपने साथी की कामयाबी पर बहुत खुश हुआ। उसे यकीन था कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अब नहीं बचेंगे। बीमारी की इसी कैफियत में चंद दिनों के बाद हुज्जाज आपकी तीमारदारी के लिए आया। बातों बातों में इसने इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा, अबू अब्दुलरहमान, तुझे किसने जहर आलूद कर दिया है? इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, तुम ये जानकर क्या करोगे? हुज्जाज ने जवाब दिया, अगर मैं इसको कत्ल ना कर दूँ तो अल्लाह मुझे हलाक कर दे। इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, मेरे ख्याल में तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे, क्योंकि जिसने मुझे नेज़ा मारा है, इसको तूने ही हुक्म दिया था। हुज्जाज ने नाराज़ी के आलम में उठते हुए कहा, अल्लाह तुझ पर रहम करे, ऐसी बातें क्यों करते हो? इतना कहकर वो दिल ही दिल में खुश होता हुआ वहाँ से चल दिया। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा खलीफा दोम अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे थे। आपके वालिद उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फ़रमाया, अगर मेरे बाद नबुवत का सिलसिला ख़त्म ना हो चुका होता तो उमर नबी बनकर मबूस होता। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, मैं देखता हूँ कि शैतान सिर्फ इंसान और जिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों को देखकर भागते हैं। इसी तरह की एक और रिवायत इब्ने असाकर ने सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ए उमर, बेशक शैतान तुझसे डरता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम जानते थे कि आप मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, साबित कदमी और आइनी अज़्म आपकी ज़ात के अहम तरीन औसाफ़ थे। मक्के के माशरे में आपका बड़ा मकाम था, शायद इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हश्याम में से किसी एक को चुन ले। उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो वो वाहिद आदमी थे जिन्होंने दूसरों की तरह छुप कर हिजरत नहीं की। हिजरत करते वक्त तलवार को लटकाए हुए थे और उस मौके पर वहाँ से बाकायदा ऐलान और चैलेंज करके लोगों की नज़रों के सामने से निकले। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की पैदाइश नबुवत के तीसरे साल हुई। आपकी पैदाइश के वक्त दीन इस्लाम इब्तदाई मराहिल में था। कुरैश मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की ज़बरदस्त मुखालफत कर रहे थे, हत्ता कि आपके वालिद उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो भी दावत हक़ के ज़बरदस्त मुखालिफ थे। इनका भी आम लोगों की तरह यही ख्याल था कि नए दीन को कबूल करने से वो माशरे में अपना मकाम खो बैठेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम ने लोगों के दरमियान बराबरी की रस्म डालकर आका और ग़ुलाम का फ़र्क मिटा दिया था। इनका ताल्लुक एक मोअज़्ज़ज़ और आला ख़ानदान से था। जंगों के दौरान दुश्मन के साथ मुज़ाकरात में इनको सफ़ीर मुकर्रर किया जाता था। अमन के दिनों में भी वो फ़ख्र वक़ार की अलामत होते थे। जबकि कुफारे मक्का को ये एहसास हुआ कि हक़ की दावत तेज़ी से फैल रही है, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और दुनिया दीन माशरे में अपनी जड़ें पकड़ रहा है, तो इन्हें ख्याल आया कि इस मसले का हल अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्ला कत्ल करने के सिवा कुछ नहीं। चुनाचा ये ज़िम्मेदारी उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो के को सौंप दी गई। वो तलवार उठा, हाथ में पकड़े कत्ल के इरादे से निकले तो रास्ते में किसी आदमी से इन्हें बहन और इसके शौहर के कबूल इस्लाम का इल्म हुआ। गुस्से में भरे इनके हाँ पहुँचे, लेकिन मारपीट के बावजूद इन लोगों ने दीन हक़ को छोड़ने से इनकार कर दिया। उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, लाओ जो कुछ तुम पढ़ रहे थे मैं भी देखूं। इनकी बहन फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, तुम नापाक हो। चुनाचा उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने गुसल किया। बाद अज़ा इनकी बहन ने वो औराक इनके हवाले कर दिए। इन पर सूरह तोहा लिखी हुई थी। उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हों ने जब इनको पढ़ा तो चेहरे की रंगत बदल गई, ताज्जुब के आसार नुमाया होने लगे। उन्होंने इससे कबल ऐसा कलाम कभी नहीं सुना था। इनका दिल कह रहा था कि ये किसी आदमी का कलाम नहीं हो सकता। फिर पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम मुझे कहाँ मिल सकते हैं? उन्होंने कहा, वो सफ़ा पहाड़ी के ज़ेरे हिस्से में होंगे। यूं हिदायत की किरणों ने सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों के दिल में घर कर लिया और उन्होंने दीन हक़ को कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद बाद सहाबा ने इन्हें मशवरा दिया कि वो अपना इस्लाम कबूल करने का अमल खुफिया रखें। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं इस्लाम का इजहार भी ऐसे ही आलिउल ऐलान करूँगा जिस तरह मैं कुफर का बरमला इजहार करता था। अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो मक्के की दिलेर शख्सियत और अव्वलुल अज़्म हस्ती उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे थे। नबुवत के 13वीं साल उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अहल आयाल के साथ मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो भी अपने वालिद गिरामी के साथ मदीने मुनव्वरा पहुँच गए। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 10 बरस थी। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपना घर बार छोड़ दिया और मदीने की तरफ हिजरत कर गए। आप अपना अक्सर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारने की कोशिश करते। हिजरत के बाद जब कभी आप मक्का तशरीफ़ लाते तो अपने घर ना ठहरते, मोहम्मद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैहि बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हिजरत के बाद मक्के में अपने घर के करीब से गुजरते तो अपनी आंखें बंद कर लेते, इन मकानात की तरफ देखने की जहमत भी ना करते जिनमें वो कभी रहा करते थे। सहाबा कराम अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा रहते। वो सब अकीदत, मोहब्बत और एहतराम में एक से बढ़कर एक थे, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की फरमाबरदारी इन सब से जुदा और मुनफरिद थी। इसका सबसे अहम सबब यह था कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। सूरह आले इमरान आयत 31। इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अल्लाह ताला के इस हुक्म के मफहूम को अच्छी तरह समझते थे। इस मोहब्बत के नतीजे में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल फरमाबरदारी करते थे। आप हर वो काम करते थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, हर हुक्म की फौरी तामील करते और जिन चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका उनसे बाज रहते थे। यहाँ तक कि राह राह चलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते थे, वहाँ बैठते जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ चुके होते, वहाँ दुआ करते जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की होती। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मकाम पर बैठकर दुआ की होती तो वहाँ बैठकर दुआ करते, और अगर खड़े होकर दुआ फरमाई होती तो खड़े होकर दुआ फरमाते। अगर इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को पता चल जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा रहे हैं तो इनकी ये ख्वाहिश होती कि वो भी उस दरख्त के नीचे कुछ देर बैठ जाएं। इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम ढूंढते फिरते, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज अदा की होती वहाँ नमाज अदा करते। यहाँ तक कि अगर किसी दरख्त के साए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रख चुके होते तो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उस दरख्त को पानी देते ताकि वो दरख्त सूख ना जाए। गोया वो उस दरख्त के नीचे सिर्फ बैठे बैठते ही नहीं थे बल्कि इसकी देखभाल भी करते थे ताकि वो दरख्त सरसब्ज़ व शादाब रहे और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की नेमत हासिल करते रहें। बेशक ये सच्ची मोहब्बत की एक नादर मिसाल है, जिस मोहब्बत के साथ फरमाबरदारी ना हो वो मोहब्बत ही क्या। इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की फरमाबरदारी का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया, हुक्म नहीं दिया, तब भी अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश पर पाबंदी से अमल करते। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश हम इस दरवाज़े को औरतों के लिए ख़ास कर देते। ये सुनना था कि इसके बाद इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस दरवाज़े से ज़िंदगी भर दाखिल नहीं हुए। इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने के अमल को सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा समेत दीगर सहाबा कराम ने भी महसूस किया। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कहती हैं, जिस कदर इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने का अहतमाम करते कोई दूसरा सहाबी ऐसा नहीं करता था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी जगह से गुजर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बग़ैर किसी इरादे के अपनी ऊँटनी की रस्सी खींच ली जिसके नतीजे में ऊँटनी ने एक दो चक्कर काटे तो इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस मकाम पर अपनी ऊँटनी के साथ ये अमल दोहराते। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में अहद वफा निभाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करते रहे। उनके सामने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता तो इनकी आँखें भीग जातीं। इनकी शदीद ख्वाहिश होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब ना की जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कही हो या बात में किसी कमी बेशी का इर्तिकाब हो। इनके हम असर सहाबा कराम कहा करते थे, ए अल्लाह, तू अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को उस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक हमारी ज़िंदगी है ताकि हम उनकी पैरवी करते रहें, क्योंकि उनसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलने वाला हमारे इल्म में कोई नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दुनिया और इसकी लज्जतों से दूर रहते थे। एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ्फान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को काजी बनने की पेशकश की और कहा, आप लोगों के दरमियान फ़ैसला क्या करें? इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जवाब दिया, लोगों के दरमियान की बात को छोड़ें, मैं तो दो आदमियों में भी फ़ैसला नहीं करूँगा और ना ही दो आदमियों की इमामत करूँगा। सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप मेरी नाफरमानी कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि मुझ तक ये बात पहुँची है कि काजी तीन तरह के होते हैं। एक, जिसने ला इल्मी में फ़ैसला किया वो जहन्नुम में दाखिल होगा। दूसरा, जिसने ज्यादती की और ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला किया वो भी जहन्नुम में दाखिल होगा। तीसरा, जिसने कोशिश करके दुरुस्त फ़ैसला किया वो ज़रूरत के तकाज़ों को पूरा करने वाला होगा, इसे अजर मिलेगा, ना उस पर कोई गुनाह का बोझ होगा। सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने फरमाया, लेकिन आपके वालिद तो फ़ैसले किया करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, मेरे वालिद अगर फ़ैसले किया करते थे तो किसी मसले में पेचीदगी आने की सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। अब अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुश्किल महसूस करते तो जिब्राईल अलैहि सलाम से दरियाफ़्त किया करते थे। अमीरुल मुमिनीन, जब कोई मुश्किल दरपेश आ जाए तो मैं किससे पूछूं? क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना, जिसने अल्लाह से पनाह मांगी उसने हकीकी मायनों में पनाह देने वाली ज़ात से पनाह तलब की है? सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हों ने फरमाया, हाँ, ऐसी बात तो है। तब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हों ने कहा, बस मैं अल्लाह से पनाह तलब करता हूँ कि आप मुझे काजी बनाएं। ये सुनकर उस्मान बिन अफ्फान रदी अल्लाह तआला अन्हों ने इनको काजी बनाने का ख्याल तर्क कर दिया। इसी तरह एक मरतबा सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हों ने इन्हें शाम का गवर्नर बनने की दावत दी और कहा, ए अबू अब्दुलरहमान, आप ऐसे आदमी हैं जिनकी बात शाम के लोग मानते हैं, इसलिए मैं आपको इन पर वाली यानी गवर्नर मुकर्रर करता हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, मैं आपको अल्लाह ताला का वास्ता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी रिश्तेदारी और ताल्लुक़ का वास्ता देकर कहता हूँ कि मुझे इस काम से बचा कर रखिए। लेकिन सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हों ने इनकी दरख्वास्त रद्द कर दी। तब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हों ने उम्मुल मुमिनीन सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से सिफारिश करवाई, लेकिन सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हों ने फिर इनकार कर दिया। तब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हों रात की तारीकी में मक्के चले गए। फिर लोगों ने इन्हें मक्के में सजदे की हालत में ये कहते सुना, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं सिर्फ तेरे खौफ की वजह से कुरैश के साथ दुनियादारी में शरीक होना नहीं चाहता। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को वाकई दुनिया और इसकी लज्जतों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने माल में से जो इनको पसंद आ जाता वो उसको अल्लाह की राह में दे देते। एक मर्तबा उनका आज़ाद करदा एक गुलाम इराक से उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। सलाम अर्ज़ करने के बाद उसने कहा, मेरे आका, मैं इराक से आपके लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, वो जवारिश एक दवा है। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो बोले, वो क्या होती है? उसने कहा, ये खाने को हज़म कर देती है। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, मैंने तो 40 बरस से पेट भरकर खाना नहीं खाया, मैं इस हज़म करने वाली दवा का क्या करूँगा? इसी तरह इनसे मोहब्बत और अकीदत रखने वाला एक आदमी कुर्रा इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने देखा कि इनके जिस्म पर खुरदुरा लिबास है। कहने लगा, मैं आपके लिए खुरासान से नरम कपड़ा लेकर आया हूँ, जो वहाँ ख़ास तौर पर तैयार होता है। अगर आप इसे जेब तन करेंगे तो मेरी आँखों की ठंडक पहुँचेगी। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इसकी तरफ़ देखा और फिर कपड़े को जांचा और कहा, ये रेशम तो नहीं है? कुर्रा ने कहा, जी नहीं, ये तो सूती है। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो बोले, फिर भी मैं इसको पहनने से डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसको पहनने के बाद मैं मुतकब्बिर और मगरूर हो जाऊँ, और अल्लाह ताला को तकब्बुर और गुरूर पसंद नहीं। इतना कहने के बाद उन्होंने कपड़ा वापस कर दिया। उनके हवाले से ये बात बहुत मशहूर थी कि इनके घर के सारे सामान की कीमत 100 दरहम से ज़्यादा नहीं थी। हकीकत ये थी कि उन्होंने दुनिया के असल रूप को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने दुनिया से बेरغبती इख्तियार की और वो आखरत की हकीकत को भी जान गए थे। इसी बिना पर इसके हुसूल में इतनी ज़्यादा मेहनत और कोशिश की, उन्होंने जिस अंदाज़ में ज़िंदगी गुजारी, इसका एक एक लम्हा इस बात की गवाही देता है कि दुनिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया के बारे में फरमाते थे, दुनिया की मिसाल तो एक दरख्त की मानिंद है जिसके साए में आदमी घड़ी दो घड़ी आराम करता है और आगे चल देता है। इस हकीकत के पेश नज़र वो अल्लाह ताला से डरते रहे। इनके भतीजे अब्दुल्ला बिन उबैदुल्ला बिन उमर रहमतुल्ला अलैह अपने बाप के बारे में कहते हैं कि एक दिन उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी, फ़कैफ़ा इज़ा जना मिन कुल्ली उम्मतिम बि शहीदिन व जना बिका अला हाउलाई शहीदन। उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत के साथ एक गवाह भी सामने लाएंगे, और ए नबी तुझे हम उन लोगों पर बतौर गवाह सामने लाएंगे। जब ये आयत ख़त्म की तो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बहुत रोए, इतना कि इनकी दाढ़ी भीग गई। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। इनकी रातें इबादत में गुजरती और रोज़े रखना इनके मामूल में शामिल था। यही वजह थी कि इब्ने मसीब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर मुझे किसी के मुतालिक गवाही देने का इख्तियार होता कि वो जन्नती है, तो मैं इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में गवाही देता कि वो जन्नती है। नाफे रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने घर में क्या करते हैं? नाफे रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वो ऐसा काम करते हैं जिसका शायद तुम एहतमाम ना कर सको। वह हर नमाज के लिए वज़ू करते हैं, फिर वज़ू और नमाज के दरमियान कुरान की तिलावत में वक्त गुजारते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा रात को ऐसे सोते जैसे परिंदे सोते हैं, यानी थोड़ा सा सोते फिर उठकर नमाज पढ़ते, फिर थोड़ा सोते फिर उठकर नमाज पढ़ते। इस तरह 4-5 बार रात को नमाज पढ़ते, बाज़ औक़ात आज दिन में बग़ैर किसी ज़रूरत के बाज़ार का चक्कर लगाते, कुछ ख़रीदने की नीयत से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए कि बाज़ार में मिलने वाले लोगों को सलाम करके सवाब हासिल करें। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत में नरमी और दरगुजर जैसी खूबियाँ बहुत नुमाया थीं। उन्होंने ज़िंदगी भर कभी किसी ग़ुलाम या नौकर को बुरा भला नहीं कहा। एक मरतबा अपने ग़ुलाम को दरश्त लहजे में डांटा तो बाद में इसके अजाले के लिए उसे आज़ाद कर दिया। ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैंने देखा अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को एक आदमी गाली दे रहा है और वो खामोश बैठे हैं। उसके जवाब में मैं बस इतना कहा कि मैं और मेरा भाई आसिम किसी को गाली नहीं देते। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछा गया कि दोस्त का दोस्त पर क्या हक है, तो उन्होंने जवाब दिया, दोस्त को भूखा रख कर तुझे पेट भर कर खाना नहीं खाना चाहिए, उसे बरहाना रख कर तुझे अपने बदन पर लिबास नहीं पहनना चाहिए, खुशी गमी में इसके साथ शरीक होना चाहिए। एक मरतबा एक आदमी ने इनको इस अंदाज़ में पुकारा, ऐ सबसे अच्छे या सबसे अच्छे इंसान के बेटे। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ना मैं सबसे अच्छा हूँ और ना सबसे अच्छे इंसान का बेटा हूँ, बल्कि अल्लाह के बंदों में से एक बंदा हूँ और इस ज़ाते बारी ताला से डरता रहता हूँ। अल्लाह की कसम, तुम लोग आदमी की इस तरह मुबालगा आमेज़ तारीफ़ करके उसको हलाक कर देते हो। एक मरतबा उन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, फिर उससे पीछे नहीं हटा और ना आज तक इसमें कोई तब्दीली आने दी, और ना किसी फितनाबाज के हाथ पर बैत की, और ना किसी मोमिन को आराम से महरूम किया। इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ही का कौल है, वादा खिलाफी मुनाफ़त का एक तहाई हिस्सा है, जबकि वादे की पासदारी ईमान का एक तहाई हिस्सा है। तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बतौर तारीफ़ और अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए बतौर फ़ख्र जिक्र किया? अल्लाह ताला ने फरमाया है, उस किताब में इस्माइल का जिक्र कर बेशक वो वादे का बड़ा पाबंद था। एक मकाम पर अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो मुझे नमाज की तरफ बुलाए मैं उसकी दावत कबूल करता हूँ, और जो मुझे मेरे किसी मुसलमान भाई के कत्ल और इसका माल छीनने के लिए बुलाए मैं इसकी दावत रद्द करता हूँ। अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को दीन का वसी इल्म और शानदार फहम व फरासत से नवाजा था। वह अपने वक्त के बहुत बड़े फ़कीह थे, उनको फ़िक्र पर अबूर हासिल था। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 60 साल तक ज़िंदा रहे। हज के दौरान और दीगर मौाक़े पर वो अक्सर फतवे दिया करते थे। लोगों को हकीकी मायनों में उन्हीं के फतवे से इत्मीनान हासिल होता था। वो फतवा देने के लिए सबसे पहले मसले का हल कुरान में तलाश करते, अगर वहाँ से हल ना मिलता तो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करते, अगर वहाँ से हल ना मिलता तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के इज्तिहाद अपनी दीनी बसीरत और वसी इल्म की बिना पर शरीयत के मुताबिक कोई राह तलाश करना से फ़ायदा उठाते। अगर सहाबा कराम की आरा इस मसले में मुत्तफिक मिलती तो इनसे इत्तेफाक करते थे, अगर सहाबा कराम के अक्वाल मुख्तलिफ मिलते तो जो हक़ के ज़्यादा करीब मालूम होता इसी को अपनाते। एक मर्तबा एक चोर ने इब्ने वादा नामी आदमी की अलमारी में नकब लगाई। इसने अलमारी में से की चीज़ें इकट्ठी कीं, लेकिन इकट्ठी करने के बाद ले जा ना सका। लोगों ने इसकी सज़ा के हवाले से इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से फ़तवा पूछा। उन्होंने फतवा दिया कि इसको सज़ा के तौर पर कोड़े भी मारो और इसका हाथ भी काट दो। इत्तेफाक से अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा वहाँ से गुजरे। उनको सूरत हाल का पता चला तो इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास पहुँचे और उनसे पूछा, आपने इस आदमी का हाथ काटने को कहा है? इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, हाँ। तब इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, इस आदमी पर कोई सज़ा लागू नहीं होती जब तक वो किसी चीज़ को बाहर निकाल कर ना ले जाए। इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इनकी राय सुनकर हैरान हुए, मसले पर अस्सरे नौ गौर किया तो इन्हें इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का फ़ैसला ही दुरुस्त मालूम हुआ। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तआला ने दीगर खूबियों के साथ सखावत की खूबी से भी खूब नवाजा था। वह बहुत करीम और सखी थे, किसी मांगने वाले को कुछ दिए बगैर कभी नहीं जाने देते थे। वो अल्लाह की राह में हमेशा अपनी बेहतरीन चीज़ दिया करते थे। उनका कहना था कि अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरीन है, जो बेहतर के अलावा किसी चीज़ को कबूल नहीं करती। एक मर्तबा वो अपनी ऊँटनी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें अपनी ऊँटनी बहुत अच्छी महसूस होने लगी। उन्होंने ऊँटनी को बैठने का इशारा किया, इसको बिठा कर नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह से कहा, इस ऊँटनी से ज़ैन उतार दो और उस पर कुर्बानी का निशान लगाकर उसको कुर्बानी के जानवरों में शामिल कर दो। इसी तरह एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को इनके ग़ुलाम नाफ़े को ख़रीदने के लिए 10,000 दरहम दिए। वो घर आए और अपनी बीवी सफ़िया से इस मामले में मशवरा किया। फिर ख़ुद ही कहने लगे, क्यों ना इससे बेहतर चीज़ को अपनाया जाए, इसे अल्लाह की राह में आज़ाद कर देते हैं। चुनाचा नाफ़े को आज़ाद कर दिया गया। अब अय्यूब बिन वाइल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक दफ़ा इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा 10,000 दरहम लेकर आए और उनको लोगों में बांट दिया। फिर जब अपनी सवारी के लिए घास खरीदने का मौका आया तो जेब खाली थी, चुनाचा 1 धरम उधार लेकर घास वगैरह लाई गई। इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा उस वक्त तक दस्तरखान पर खाने के लिए नहीं बैठते थे जब तक कुछ गरीब और नादार लोग भी उनके साथ खाने पर ना होते। नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इस दुनिया से रुखसत हुए तो वो बेशुमार गुलामों को आज़ाद कर चुके थे। इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के दिल में जिहाद का जज्बा बचपन ही से जवां जवां था। कम उम्री में ही दीन का फसीह फहम हासिल करने के बाद इनकी आरजू थी कि वो भी दीन के दुश्मनों से लड़ें, अल्लाह की राह में जिहाद करें। मुजाहिदीन और शहदा का अल्लाह ताला के यहाँ क्या मकाम है, वो इससे अच्छी तरह आगाह थे। इसी बिना पर वो जिहाद में हिस्सा लेने के आरजूमंद थे। गज़वाए बदर में जब मुसलमान कुफार से लड़ने के लिए निकले तो वो भी इनके साथ हो लिए। इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के सिपाही बन जाएं, लेकिन इनकी कम उम्री आड़े आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस भेज दिया। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 12 बरस थी। जब गज़वाए अहद का मौका आया तब फिर जज्बाए जिहाद उनको मैदान जंग में खींच लाया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कमसिनी की वजह से वापस कर दिया। जिहाद की तड़प लिए अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बेकरार रहते थे, लेकिन जिहाद में शिरकत का मौका मिल नहीं रहा था। उन्हें उस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था जब वो जिहाद की लज्जत से आशना हो। ग़ज़वे खंदक का मौका आया तो उन्होंने फिर अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी। ये ख़दशा भी सर उठा रहा था कि कहीं इस बार भी उन्हें वापस ना कर दिया जाए, लेकिन इस मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जंग में शिरकत की इजाज़त दे दी। इजाज़त पाकर इनकी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि अब वो दिलो जान से अल्लाह के दुश्मनों से लड़ सकते थे, अल्लाह के दीन के दिफा के लिए अपना खून पसीना एक कर सकते थे। इस जंग में उन्होंने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और यूँ अपने ज़ौक़े जहाद की तस्कीन की। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की जिहाद के साथ मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी इसी तरह जारी रही। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दीन से फिर जाने वालों मुर्तदों से जंग में उन्होंने एक कामयाब सिपाही की तरह शिरकत की, यहाँ तक कि ये फितना फना की घाट उतर गया। अपने वालिद सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी उन्होंने जंगों में हिस्सा लिया। सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी शुमाली अफ्रीका को फ़तह करने के सिलसिले में होने वाली जंगों में शरीक हुए। मारका, नहावंद और कुस्तुनिया में भी शिरकत की। वो जब भी माँ किसी मार्के से वापस आते, फिर से नए मार्के की तैयारी शुरू कर देते। ये जज्बा आखिर उम्र तक बरकरार रहा। हज्जाज बिन यूसुफ की साजिश से जब वो मर्जुल मौत में मुब्तला हुए तो उन्होंने अपने बेटे सालिम रहमतुल्लाह अलैह से कहा, ऐ मेरे बेटे, अगर मैं हरम के अंदर फौत हो जाऊँ तो मुझे हरम के हुदूद से बाहर दफन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक बार हरम से हिजरत करने के बाद दोबारा इसमें दफन हो जाऊँ। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, अगर हम कर सके तो ज़रूर ऐसा करेंगे। इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हैरत से कहा, तूने सुना मैंने क्या कहा, फिर भी तुम कह रहे हो कि हम अगर कर सके तो ऐसा करेंगे। बेटे ने अदब के साथ कहा, मैं कहता हूँ हुज्जाज हम पर गालिब आएगा और आपकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएगा। ये सुनकर इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा खामोश हो गए। वफात के बाद आपको जी तवा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। वफात के वक्त आपकी उम्र 86 बरस थी। अतात बड़ा अनमोल जज्बा है। अतात सच्चे दिल से की जाए तो अपनी कदर आप पैदा कर लेती है, उस कोयले की तरह जो सदियों ज़मीन की शिकस्त और रेख्त बर्दाश्त करती है और बिलआख़िर एक पेश कीमत हीरे में तब बदल जाता है। खामोश अतात कोयले को हीरा बना देती है, लेकिन हीरे को चमक दमक, बनावट और रंग रूप महारे दस्तकार ही देते हैं। उन्हें भी कायनात के अफजल तरीन इंसान ने अपने हाथों से तराश खराश कर एक अनमोल हीरे का रूप दिया। इल्म उनकी पहचान थी, सखावत उनकी शान थी, मोहब्बत उनका ईमान थी और उस्ताद की अतात व फरमाबरदारी उनकी हर्ज जान थी। खूबियों के ये पैकर अजमत की बुलंदियों पर फाइज अपने दौर के फ़िक़िया भी थे। उनकी ज़िंदगी की खूबसूरत झलक इस किताब में आपको मिली होगी और यकीनन आपके दिल पर असरअंदाज हुई होगी। यहाँ पार्ट नंबर 6 मुकम्मल हुआ। आगे की तफसील अगले पार्ट में जानिए। जज़ाकअल्लाह।